नसरीन आबिद, आप बताएंगी कि जिस औरत का दूध पिया हो किसी बच्चे ने, तो क्या उसके खाविंद की तरफ से जो रिश्ते आते हैं वो भी हराम हो जाते हैं? इसके खाविंद की तरफ से जो रिश्ते हैं क्या वो भी हराम हो जाते हैं?
अस्सलाम वालेकुम रसूल बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपसे पूछा मैंने। बिल्कुल
जी, रजात के रिश्ते दोनों तरफ से हो जाते हैं, ना महरम ये महरम।
ठीक है, यानी औरत की तरफ से भी और उसके
मर्द की तरफ से भी।
यानी अगर एक औरत का दूध पिया है तो उसके खाविंद के भाई क्या इस बच्ची के लिए महरम हो जाएंगे?
जी हो जाएंगे।
बिल्कुल सही, शाबाश। यानी वो भी उसके महरम बन जाएंगे। और ये इस चीज को इस तरह से ही आप समझे, ये याद रखने का तरीका ये है कि आप ऐसे समझें कि जैसे कि किसी का सक्का बच्चा होता है, तो जाहिर है जो बाप की तरफ वो बाप बन गया, यानी पैदा तो औरत से हुआ है लेकिन वो उसका शौहर इसका बाप हो गया। ठीक है, चाहे सौतेला यानी चाहे इसके नुतफे से नहीं भी हो वो बच्चा, तब भी वो एक बाप की हैसियत रखता है, सौतेला बाप हो जाता है, राइट। और इसी तरह जो रिश्ते बाप के थ्रू यानी इंसान के ऊपर हराम होते हैं, वो जैसे सके बाप के थ्रू हो जाते हैं, इसी तरह से रजात के जो रिश्ते बनते हैं वो भी इसी तरह हराम हो जाते हैं। और उसी तरह भतीजी, भांजी, खाला, फूफी, मामू, ये ताया, चचा, ये सब रिश्ते उसी तरह हो जाते हैं जैसे सके माँ बाप के साथ होते हैं, इसी तरह रजात में भी होते हैं। ये आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी, बहुत आसान सा एक सवाल है। चलिए शहादी, आप बताइएगा कि अगर आज डीएनए टेस्ट वगैरह से पता कराया जाए कि ये उसकी औलाद है या नहीं, तो ऐसा टेस्ट करवाना जायज है और इसका यकीन करना जायज है या नहीं?
इसका यकीन करना जायज है।
बिल्कुल, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खियाफा शनास की बात का इतबार किया था ना, तो इसलिए ऐसा टेस्ट करवा भी सकते हैं और उसका यकीन भी कर सकते हैं। उस वक्त तो वो खियाफा शनास होते थे, आज तो डीएनए टेस्ट है, तो वो उसी तरह की चीज है जैसे पुराने जमाने में वो होते थे। लेकिन इसके अंदर हमें फिर डाउट करने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा जी, राफिया बेगम, आप बताएंगी कि कोई पहले से शादीशुदा अगर है तो बाकरा के पास कितने दिन रहेगा? वो बाकरा के साथ उसकी शादी होती है किसी कवारी के साथ, पहले से आदमी शादीशुदा है, तो वो फिर उसके साथ कितने दिन पहले रहेगा?
जी, अगर शादीशुदा औरत है तो उनके साथ 3 दिन खयाम करेगा, और कुंवारी औरत होगी तो 7 दिन उनके साथ रहेंगे, बारी मुकरर करेंगे।
नहीं, बारी मुकरर करेंगे या किस तरह से, मतलब बारी कैसे हो गई? ये 7 दिन उसके साथ,
7 दिन लगातार एक साथ एक
सही
रहेंगे उनके साथ,
और उसके बाद
है?
उसके बाद क्या करेंगे 7 दिन के बाद?
उसके बाद फिर बारी मुकरर कर देंगे।
शाबाश, बिल्कुल, फिर बारी मुकरर करेंगे क्योंकि उसकी पिछली भी बीवी है। लेकिन देखें, इस्लाम ने जज्बात का कितना ख्याल रखा, यानी इस चीज से आप अंदाजा करें कि एक जाहिर कंवारी है, उसके शौक होते हैं, वो होता है, तो जब कोई आदमी शादी करे कंवारी के साथ तो 7 दिन पहले उसके साथ ही रहे। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा ये भी तवज्जो करें, ये तो एक शादीशुदा आदमी की बात है कि शादीशुदा कंवारी के साथ जब करे। आज के वक्त में भी आपने देखा हमारे यहाँ ये जो रिवाज, अब उसको हनीमून आप कह लें या जो मर्जी कह लें, मगर ये एक रिवाज होता है कि शादी हुई जाहिर कंवारी के साथ ही ज्यादातर होती है, तो फिर उसके बाद कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, कहीं कुछ है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ा सा टाइम दोनों साथ गुजारें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और कंवारी के जाहिर है शौक होते हैं और अभी नई नई शादी हुई होती है तो उसको टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पे तो जाहिर है शादीशुदा के लिए कहा गया कि हालांकि उसकी पहले से शादी हुई भी है, फिर भी उसकी पिछली बीवी का भी हक है, लेकिन फिर भी कहा गया कि वो उसको वेट करना पड़ेगा। तो जब कोई पहले से शादीशुदा नहीं भी होता, कंवारा लड़का होता है, तो तब भी अगर उसके घर वाले हैं तो उनको इतना टाइम देना चाहिए इन दोनों को, इतना उनके लिए फैसिलिटेट करना चाहिए इसको कि वो लोग वो दोनों आपस में थोड़ा वक्त गुजार सके। ये नहीं कि हर टाइम ऊपर ही सर पे सवार रहे हैं कि ये बस किसी तरह हमने इधर उधर नहीं हिलना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उनको वक्त देना चाहिए। यहाँ पे हम अगर शादीशुदा आदमी का ये सीख रहे हैं तो फिर जो कमा रहा है उसके तो अपने भी खुद के भी शौक होंगे, और दूसरी बात ये कि जहाँ पे पहली बीवी को कहा गया कि तुम इंतजार करो, तुम्हारी नहीं अभी यानी जो कुंवारी आई है उसको उसको पूरा टाइम देने दो, तो जब रात किसी के पास गुजारनी होती है तो जाहिर है दिन भी उसी का होता है। जब पहली बीवी को ये कह दिया गया, हालांकि उसका हक है कि एक दिन इसके पास रहे एक दिन उसके पास रहे, लेकिन उसको भी कहा गया यू वेट, तो फिर कहां ये कि घर वाले अगर हैं यानी जो लड़के के माँ बाप हैं बहन भाई हैं उनको तो और ज्यादा इस चीज के लिए समझना चाहिए कि अगर उसकी शादी हुई है तो उसको वक्त दिया जाए। तो ये हम सब जो माएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिनके बेटे या भाई की शादी होती है, तो हमें इस हदीस को सामने रखते हुए इतना वक्त देना चाहिए और इस चीज को बुरा नहीं मानना चाहिए कि हाय अब हमें तो पूछ नहीं रहा और बस बीवी के साथ ही बैठा हुआ। नहीं, फिर ये इस्लाम कहता है कि जब पहली बीवी के लिए के कह दिया गया तो फिर हम सबको तो समझना चाहिए ना इस बात को। तो इस चीज को इस तरह से आप देखें, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि कोई भी ऐसा नहीं हो कि जिसकी दूसरी शादी हुई और हम कहें ये तो हमारे लिए है ही नहीं, लेकिन इसको अपने उसमें भी रख के देखें कि हमारे यहाँ तो कुंवारे लड़कों की ही होती है, एक ही शादी होती है ज्यादातर, तो उसमें फिर ये हदीस किस तरह से अप्लाई होती है कि 7 दिन तो कुंवारी के लिए है ही है, तो चाहे उनको अगर नहीं भी कोई करता तो आप खुद इस चीज को तरगीब दें कि नहीं इनको आपस में वक्त गुजारना चाहिए। जहाँ पे ऐसा देखा गया कि जहाँ पे यानी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस या बहुत ज्यादा मियाँ बीवी को अलग से वक्त नहीं मिलता कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, सारा दिन भी सब लोग होते हैं और सिर्फ रात को जब बहुत ही आधी रात गुजर जाए तो फिर वो कमरे में अकेले होंगे तो तब उनको एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलेगा प्राइवेटली, तो वहां पे ऐसी जगहों पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और बहुत जल्दी एक दूसरे के गलत फहमियां या चूंकि एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते तो लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीजें होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि आदमी और औरत को अलग से वक्त गुजारने का मौका दिया जाए ताकि वो एक दूसरे से क्लोज हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अज़वाज थी लेकिन आपने देखा तमाम अज़वाज की प्राइवेसी थी, ऐसे नहीं था कि अच्छा वो हम आगे देख लेते हैं अगली हदीस को डिस्कस करते हुए इस बात को समझते हैं। देखिए ऐसे ही नहीं, वो माशरा इतना पुरसकून था, आज ये जो बेसकूनियाँ है ना हर एक चाहता है, हर एक सेल्फिश हो गया, हर एक चाहता है बस मुझे जो है मेरा हक मिले बाकी कोई किसी को मिले या नहीं मिले, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी मरियम आप बताएं कि बीवियों की बारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकर्रर किया करते थे?
वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
जिसकी रात होती थी उसको तंजीर देते थे, बल्कि उनको ये फरमा दिया था कि आपके लिए ये लाजम नहीं है कि आप बारी करें, लेकिन फिर भी वो उन्होंने बारी फिक्स की होती।
तो बारी कैसे थी यानी किसके पास 2 दिन किसके पास 3 दिन किसी के पास 1 दिन ऐसे होती थी बारी या किस तरह से बारी होती थी?
सबके पास एक रात होती थी तो फिर दूसरा दिन भी उसी का होता था, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का जो है वो 2 रातें होती थी।
अच्छा उनका तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा सही, उनका तो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यानी हमें बात समझ आई, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, कि हमें ये बात समझ आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बीवियों को एक एक रात दी हुई थी, उन्हें ऐसे तकसीम थी, ऐसे नहीं कि किसी कोई ज्यादा पसंद है तो उसके पास 2, कोई नहीं पसंद तो उसके पास 1, फिर कोई और पसंद है तो उसके पास 3, इस तरह से नहीं था। बहुत इंसाफ के साथ यानी हर एक बीवी की बारी होती थी कि एक रात उसके पास रहेंगे तो अगला दिन भी उसका होता था, और असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तमाम अजवाज के पास भी चक्कर लगाते थे यानी थोड़ी थोड़ी देर सबके पास रुकते थे, जिससे कि पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं था कि एक की बारी अगर है तो अब इसके साथ दोबारा मुलाकात होगी, अगर 9 बीवियां हैं आखिर में तो आके तो 8 दिनों के बाद इससे मुलाकात होगी, ऐसा नहीं होता था। एवरी डे हर एक को के पास चक्कर लगाया करते थे। इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सलूक पता चलता है कि हर एक का कितना ख्याल था। और सुबहान अल्लाह मैं सोचती हूँ कि ऐसे आदमी जो यानी इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी किसकी हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिसालत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर इन चीफ भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह के जज भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह के यानी एक तरह से हुक्मरान भी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल करने वाले भी हैं, उनके उनके काम के लिए दौड़ने वाले भी हैं, सोशल वर्कर समझ लें एक वो भी हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी फैमिली लाइफ भी है, और इमाम भी हैं वहां पे, और फिर मुअल्लिम भी हैं असहाबे सुफा को तालीम देने वाले, यानी आप कितने रोल्स देख ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हर रोल में ऐसा नहीं है कि अच्छा अब हम अपनी जिंदगियों में देखें, हम एक तरफ लगते हैं ना तो दूसरी तरफ कमी आने शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ लगते हैं तो तीसरी तरफ कमी आने शुरू, इधर से पकड़ते हैं तो उधर कुछ मसला हो जाता है, इधर इधर निभाने लगते हैं तो उधर कोई कमी रह जाती है। तो सुभान अल्लाह, यानी लोगों के साथ डीलिंग में, रोल्स में बिल्कुल एज अ अब्द तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादत है वो तो बेमिसाल है, लेकिन एज ह्यूमन पर्सनल जो पब्लिक डीलिंग्स हैं यानी जो खुलेबाद हैं या जो मामलात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अगर अपनी जिंदगी देखें हम तो अगर पढ़ाने लगते हैं हम एज ए टीचर हैं तो बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को देखने लगते हैं तो घर निगलेक्ट हो रहा है, घर देखने लगते हैं तो हमसाए निगलेक्ट हो रहे हैं, हमसायों को पूछने लगते हैं तो कोई और रिश्तेदारों को शिकायत होने लगती है। मतलब हमसे तो हर जगह पूरा पढ़ा ही नहीं जाता। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देना कि हम हकूक में जो हमारे से कमी रह जाती है, अल्लाह ताला इसके ऊपर हमारी पकड़ ना करना, वरना आप देखें कि हमारी कितनी कमियां रह जाती हैं। हालांकि हमारे तो इतने रोल्स भी नहीं है, हम तो इतनी जगह पे हैं नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो कितनी जगहों पे आपके हर एक जगह पे अलग अलग रोल है, और हर एक जगह पे कंप्लीट है, और हर एक जगह पे कहीं आप ये नहीं देखते कि कहीं झोल है या कहीं चिड़चिड़े हो गए हों या कहीं इस बात के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्या मसला है, यहाँ पे भी मुझे ही देखना है, वहां पे भी मुझे ही देखना है, एक मैं इंसान हूँ और मेरे ऊपर कितनी वो है, यानी हम तो कितने वो हो जाते हैं ना फ्रस्ट्रेट कुछ देर में कि किधर किधर मैं जाऊँ, वो इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि अपनी बीवियों का भी ख्याल है, ऐसा नहीं कि तुम लोग तो सब्र करो ना मैं और मेरे काम है बाहर के कि मैं अब तुम्हें ही टाइम देता रहूं। आज ये लोग एक बीवी रख के भी उसको वक्त नहीं दे सकते, यानी आप अंदाजा कीजिए एक बीवी रख के भी, कि बहुत सारी औरतों को ये शिकायत होती है कि उनके शौहर जब सुबह से गए हुए शाम को घर आते हैं तो उसके बाद उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि बात करें, बस वो टीवी लगा के बैठ जाते हैं या फोन पे अपने शुरू हो जाते हैं, और वो बेचारी बैठी रहती है और उसके शौहर के पास यानी इतना नहीं होता कि वो इससे बातचीत करें, कोई अपने कोई दुख सुख करें, इसका टाइम नहीं होता, कहते हैं बस अब हमें टीवी देखने दो। तो यानी एक बीवी के लिए भी वक्त नहीं है, और कहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अजवाज के हुकूक अदा फरमाते थे, सुभान अल्लाह। और जब एक बीवी के हक में सोचा कि नहीं अदा कर सकते तो फिर यानी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत क्या थी उसके अंदर, आगे हम उसको इस चीज को देखते हैं। मगर ये खास तौर पे आप नोट करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हालांकि फर्ज नहीं था कि अपनी तमाम बीवियों की बारी मुकर्रर करें, और बारी मुकर्रर करने के बाद उनको फिर उस तरह से इंसाफ के साथ उनसे चलें, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी मुकर्रर की। यानी ये कितनी बड़ी बात होती ना कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई पूछ नहीं, अगर चाहें तो सारे दिन एक ही के पास रहें, चाहें तो 10 दिन एक के पास रहें, चाहें तो 4 दिन एक के पास रहें, चाहें तो किसी के पास रहें ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उठा दी थी। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरफ की अगर टेंशन्स दे दी जाती कि आप घर की टेंशन्स ही लेते रहे तो बाहर की कैसे देखेंगे, तो अल्लाह ताला ने इस यानी जिम्मेदारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारिग कर दिया था कि आप जैसे चाहें तकसीम करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए इंसाफ, ये होता है इंसाफ, ये कोई अल्लाह की तरफ से कंपल्शन नहीं है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ पे ही हैं, चाहे दिल कितना भी किसी की तरफ है, लेकिन फिर वही बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मैं अपनी तरफ से इंसाफ करता हूँ, लेकिन दिल के ऊपर जोर नहीं है। दिल अगर किसी को एक को ज्यादा चाहता है तो दिल पे इंसान का जोर नहीं होता, तो उसके ऊपर मेरी पकड़ ना करना। سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق اور بہترین کردار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں. اسی لیے جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے کہ آپ کو کسی طرح سے بھی ٹینشن نہ ہو اس پہ. یہ کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ. اچھا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میں اسد سودا کا اس طرح سے حق نہیں ادا کر سکوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ شازیہ ناصر آپ بتائیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو کیا یہ جائز ہے اس طرح سے کہ کوئی ہبا کرے؟ شابہ، یعنی کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ڈیل کر سکتی ہے. اور یہ واقعہ میرے سامنے ہی ایک دفعہ آیا بھی تھا کہ کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے اگر، یعنی شوہر اس کی زبان سے ذرا تنگ تھا، یہ ایک عام زندگی کا واقعہ ہے، تو اس نے کہا اس عورت نے کہ آپ ایسا کریں، اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے اور دوسری شادی کرنا چاہتا. تو اس عورت نے کہا کہ میں اب کدھر جاؤں گی، نہ میرے ماں باپ زندہ رہے ہیں، نہ کچھ ہے، میری عمر بھی اب بڑی ہو گئی ہے، تو اب آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، مجھے کوئی نہیں اعتراض ہے، لیکن مجھے طلاق نہ دیں، تو میں آپ کو یہ اجازت دیتی ہوں اور آپ کو حقوق معاف کرتی ہوں کہ آپ پھر بھلے میرے پاس نہ آئیں، آپ اسی کے پاس رہیں. تو یہ کرنا، پھر وہ جو دوسری بیوی تھی اس نے سوال کیا تھا میرے سے کہ کیا یہ جائز ہے اس طرح سے؟ یہ تو نہیں کہ میں گناہگار ہو رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ وہاں پہ نہیں جاتے اور میرے ساتھ رہتے ہیں. تو اس کے اندر یہ دلیل ہے. دیکھیں، آپ کو اگر آپ کے سامنے اس طرح کوئی واقعہ آتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر تو کسی نے خود اپنی بیوی کے ساتھ یہ کانٹریکٹ یا طے کر لیا بات کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں آپس کی باہم رضامندی کے ساتھ. دیکھیں، بیوی میاں اور بیوی میں رضامندی ہونی چاہیے اس کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ بیوی تو نہیں چاہ رہی اور آدمی کہہ کہ نہیں میں نے نہیں تمہیں باری دینی. نہیں، اس طرح سے نہیں. عورت اور آدمی کی رضامندی کے ساتھ یہ ہو تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنا ہے شادی تو کر لیں، لیکن مجھے نہ چھوڑیں، میں آپ کو اپنے حقوق معاف کرتی ہوں. تو پھر یہ آدمی کی پکڑ نہیں ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں حضرت میمونہ کا جب جنازہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید کی؟ عشرت آپ بتائیں گی.
السلام علیکم.
جی جی بتائیے عشرت.
جی سر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ امہات المومنین، مطلب آپ کی زوجہ مبارک ہے، تو آہستہ آپ کی میت کو اٹھائے، ان کو ہلائے نہ زیادہ. یہ آپ نے تاکید کی ان کی میت کو زیادہ.
میں کیوں 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 یہ تاکید کی؟
کیونکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھی.
جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی، یعنی ایک محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے نہ ہلانا، آرام سے لے کے جانا. یہ انسان کس کے لیے کہے گا؟ جس سے محبت کرتا ہوا اس کے لیے کہے گا نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنا شفیق معاملہ فرمایا. بہت سارے آدمی اس چیز میں مردانگی سمجھتے ہیں کہ ان کو بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی مردانگی کی بات ہے کہ وی ڈونٹ کیئر. اور اگر کوئی کیئر کرتا ہو تو اس کو یعنی ایک زن مرید یا اس طرح کی چیز سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بیوی کا کرنے والا ہے. حالانکہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے. He didn't say this. کیا چیز he didn't say this؟ ہاں، حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, حضرت ابن عباس نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی, جی ابن عباس نے یہ فرمایا تھا, اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تو ان کی رسپیکٹ ہے. سوری, ابن عباس نے یہ فرمایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, حضرت ابن عباس کا, اس کو تصحیح کر لیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پہ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو محبت کا معاملہ, جو شفقت کا معاملہ ہے, جو مہربانی کا معاملہ ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پہ تھے تو کون سی بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب مجھے نام نہیں یاد ہے, کہ انہوں نے فرمایا کہ کاش یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہوتی اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے نہ گزرتے. تو دوسری ازواج مطہرات وہاں پہ تھیں, امہات المومنین, تو وہ حیران ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہی ہیں, اتنی زیادہ ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا یہ کاش یہ مجھے ہو جاتا, یہ ان کو نہ ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی, یہ کوئی اور بیوی تھی, تو شاید حضرت صفیہ تھی, میں اب یاد نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کسی کے ساتھ بھی جو معاملہ آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہی اپنی محبت اس کے دل میں آپ پیدا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا, حسن سلوک تھا اپنی ازواج کے ساتھ, حالانکہ بہت ساری بیویاں تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو برابری کا سلوک کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. ظاہر ہے جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنی زیادہ ان کے اندر برابری کرنی اور ان کو ٹائم دینا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ مشکل ہوگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نبھا کے دکھایا. اچھا جی, راحت آپ بتائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی نکاح میں کتنی بیویاں تھیں؟
ان کی 9 بیوی تھی, ان کے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ تھا تو اس کے وفات کے بعد ان کے پاس 9 بیوی تھی.
تو باریاں کتنیوں کی تھی؟
8 باریاں تھی.
اور کس کی باری نہیں تھی؟
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
شاباش, حضرت سودا کی باری نہیں تھی, باقی سب کی باریاں مقرر تھی. جی سمیہ اختر, آپ بتائیں گے کہ اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چار چیزوں کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دین کی وجہ سے تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ دین ہی سب سے بڑی چیز ہے, تو کیا باقی چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟
السلام علیکم رحمۃ اللہ. نہیں, باقی ساری چیزیں بھی دیکھی جائیں گی, لیکن صرف سیکھا تھا کہ اگر اس میں دین ہے تو اس میں زیادہ خیر ہے. مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہم دیکھتے ہیں سب اعلیٰ خاندان سے تھیں, حسن جمال والی بھی تھیں, یعنی دنیاوی خوبیاں بھی ساری تھیں. تو ان دین کے ساتھ یہ ساری دنیاوی خوبیاں شامل کی گئی ہیں, کہ اگر دین کے ساتھ یہ ساری دنیاوی خوبیاں بھی مل جائیں تو اچھی بات ہے. لیکن یعنی کہ تم پہلے دین دیکھو اور باقی چیزیں بعد میں ساری دیکھو, لیکن یہ ساری چیزیں بھی شاد شمار ہوتی ہیں.
بالکل صحیح, یعنی یہ ترجیحات بتائیں کہ پرائیورٹی نمبر 1 کون سی ہے, پرائیورٹی نمبر 1 دین ہے, اور اس کے بعد باقی چیزیں. اگر یہ نہیں کہا گیا کہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو کہیں برا سمجھا گیا ہو, اگر کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے اس کو کہیں برا سمجھا گیا ہو, اگر خاندان دیکھتا ہے, ایسا نہیں کہا گیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, اور اس میں سب سے نمبر 1 پہ دین دیکھو, مگر ایسا نہیں کہ خاندانی شرافت ہی نہ دیکھیں, کوئی بھی جا کے کہیں سے بھی کر لیں, نہیں ایسے نہیں ہے. اسی طرح جس کو ہماری زبان میں کفو کہا جاتا ہے, یعنی برابری بھی دیکھیں کہ آپ کی, یعنی آپ کی خاندانی برابری بھی ہو, ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی خاندان سے اور بہت اپنے سے نیچے جا کے بھی کرنا شادی, وہ بھی کئی دفعہ کامیاب نہیں ہوتی, جیسے کہ حضرت زینب کی حضرت زید کے ساتھ کی گئی تھی. تو پھر حالانکہ حضرت زید کوئی نیچے کوئی خاندان سے نہیں تھے, مگر چونکہ وہ ایک غلامی کی اس میں رہ چکے تھے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, کیونکہ وہ ایک سٹیٹس اس معاشرے میں جو تھا وہ برابری کا نہیں تھا حضرت زینب کے. تو وہ کہیں نہ کہیں کسی ایک فریق کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے, ایسے نہیں کہ اسلام کوئی کہتا ہے کہ ایسے دماغ میں رکھنا چاہیے, مگر کسی کے دماغ میں یہ بات رہ سکتی ہے کہ یہ تو میرے سے کم سٹیٹس کا ہے, इसी तरह जब बहुत कोई पढ़ी लिखी लड़की है, आप बिल्कुल ही एक अनपढ़ उजड़ के साथ उसकी शादी कर दे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसको नीचा देखेगी। इसी तरह कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और उसको कोई बिल्कुल अनपढ़ ला देंगे तो वो भी नहीं चल सकेगी, क्योंकि वो उसके साथ नहीं सही, हमेशा उसको नीचा देखेगा। तो कंपैटिबिलिटी देखनी जरूरी है। कंपैटिबिलिटी कफू का मतलब ये कि खानदान में भी कंपैटिबिलिटी हो, पढ़ाई लिखाई या ये, इन चीजों को आप देखेंगे और साथ मैच करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर। जी, इस वजह से हमारे जब इस तरह के रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं तो फिर अक्सर फिर प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में। जी अफसर, आप बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर को बाकरा से निकाह करने की क्यों तरगीब दी थी? क्या बाकरा ज्यादा बेहतर है?
क्योंकि वो भी यंग थे, हजरत जाबिर उनके साथ यंग लड़की रहेगी तो वो ज्यादा एंजॉय करेंगे लाइफ को।
सही, शाबाश। यानी आप बेसिकली कहने का मकसद ये है कि एज कंपैटिबिलिटी देखी, ये कहने का इसके अंदर से जो जिस्ट निकलती है वो ये है कि एज कंपैटिबल होनी भी वो अच्छा रहता है एक कामयाब जिंदगी के लिए। कि हालांकि वो बड़ी उम्र की थी और उन्होंने एक मकसद के लिए इनसे शादी की थी, यानी अपने से ज्यादा बड़ी उम्र की और एक शादीशुदा जो पहले शादी देख चुकी थी उनसे निकाह किया था। कंवारी से भी कर सकते थे, कंवारी से करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब इसीलिए दी कि मेंटल कंपैटिबिलिटी हो जाए, एक जैसी एज होगी तो एंजॉय करेंगे। मगर इस तरह से भी नहीं फरमाया कि क्यों कर ली, ये तो सही नहीं है, आपने ऐसी से क्यों की, जैसे कि हमारे यहाँ एक बुरा समझा जाता है। तो वो चीज को भी नहीं उन्होंने कहा। जी उस जमाने में कोई इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता था कि अपनी एज से बड़ी के साथ क्यों कर ली। ये तो हमारी आज की चीजें हैं ना, असल में आज भी ये क्यों है इसकी भी आपको वजह बता दूं, क्योंकि औरतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आज किसी को भी एक छोटी उम्र की लड़की मतलब अवेलेबल है तो, और दूसरी ये कि कुंवारियां इतनी ज्यादा अवेलेबल है तो फिर वो कहते हैं कि हम क्यों करें किसी और से। तो उस ऐसा रेशो नहीं था जैसे कि आज के जमाने में, जब भी तो एक औरत को बहुत सारे रिश्ते आ जाते थे जो ही वो बेवा होती थी या तलाक याफ्ता होती थी। दूसरी बात ये थी कि एक आदमी के पास 3-4 औरतें अगर हैं तो फिर जाहिर है कितनी औरतें तो एक जगह ही मतलब चली गई ना, कंज्यूम हो गई। अब तो इसका मतलब माशरे में कोई बहुत सारी अवेलेबिलिटीज तो नहीं थी। आज के वक्त में एक एक औरत है हर एक के पास, इसलिए बहुत सारी हैं जो ऐसे ही बैठी हुई हैं, कुंवारी बैठी हुई हैं, या बहुत सारी हैं जो बेवा हो गई या तलाक याफ्ता हो गई और उनके पास कोई रिश्ता नहीं। और अगर आज के जमाने में भी एक आदमी के पास 3-4 बीवियां होती और इसकी इसको बुरा ना समझा जाता, या एक आदमी इतनी बीवियों को उठा सकता उनका बोझ, तो फिर इतने माशरे के अंदर गैर शादीशुदा औरतें ना बैठी होती। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कोई बुराई है इसके अंदर कि क्यों बड़ी के साथ कर ली थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यानी कंपैटिबिलिटी के लिए फरमाया। तो हमें भी देखना चाहिए कि कहाँ पे ज्यादा बेहतर कंपैटिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अगली हदीस से हमें एक और बात बड़ी जबरदस्त पता चलती है जो कि लोग बहुत सवाल भी करते हैं। नफीसा, आप बताएंगे अगली हदीस से हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने क्यों शादी की थी ये अपनी से, यानी कुंवारी के बगैर, यानी एक जो पहले से शादीशुदा औरत थी, शादी जो देख चुकी थी, उनसे क्यों शादी की थी? जी नफीसा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी
जी, इसलिए कि वो उन्होंने उनकी बहनें भी थी तो उन्होंने सोचा था कि ये ज्यादा उम्र की जो होंगी ज्यादा अच्छी तरह से संभाल सकेंगी, मेरे सारे मसाइल को समझ सकेंगी।
बिल्कुल, तो इससे क्या पता चलता है आपको?
यही पता चलता है कि हमें भी समझदारी के समझदारी से करना चाहिए कि अगर पहले बच्चे हैं या कुछ है तो फिर ऐसे यंग लड़की को ले आए और जो समझ ना सके आपके हालात को तो सोच समझ के काम करना चाहिए।
सही, शाबाश। यानी उन्होंने देखा कि जो उनके वो थे, अगर कंवारी को ले आते तो कंवारी के देखे ना वो एक ऐसी होती कि उसके अपने चोंचले और उसके अपना बचपना एक होता। तो उन्होंने एक, यानी शादीशुदा औरत से मतलब ये है कि पहले से शादीशुदा औरत मतलब एक मिच्योर औरत थी, मिच्योर औरत को लेकर आए ताकि उनकी बहनों का ख्याल रख सके। और यहाँ पे नहीं कहा गया कि बहनों को वो कोई यानी उनकी कोई नौकरानी बन के लेकर आए कि भाई तुम अब इनका ख्याल करो और मैं बाकी यानी चीजों को देखूं, ऐसे नहीं है। मतलब यानी ये है कि एक घर की जो गार्डियन होती है, एक घर की जो संभालने वाली होती है, जब औरत किसी घर में जाती है तो वहां पे जो भी अफराद रहने वाले हैं उस घर के अंदर, उनकी एक तरह से केयर टेकर वो हो जाती है, कि सबकी केयर करनी, सबका देखना, सबको का ख्याल करना, ये बात है। और ना उस जमाने में भी देखें, एक लौंडियाँ, गुलाम, ये वो सब चीजें तो होती थी, एक लौंडी भी ला सकते थे, मगर एक होती है ना कि जो एक जिसको आप कहेंगे जैसे एक वालदा का रोल होता है, एक बड़ी औरत किसी छोटी लड़कियों के ऊपर हो ताकि उनको देख सके कि क्या क्या उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हैंडल कर सके, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने फरमाया ना कि मैंने ये पसंद नहीं किया कि इनके पास इन्हीं जैसी लड़की ब्याला, यानी इतनी एज की बच्ची होगी जितनी ये है, तो फिर वो कैसे इनको संभालेगी, वो तो उनके साथ ही खेलती पड़ेगी सारा दिन। तो ये अगर एक औरत जो कि मिच्योर होगी तो वो फिर देखभाल भी करेगी, देखेगी भी। इससे हमें पता चलता है कि अगर ससुराल की देखभाल कोई कर लेता है, अगर उनका ख्याल कर लेते हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि लो जी हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, हमें क्यों कह दिया गया, हमें क्यों इस चीज के अंदर डाला गया। जी अगर अगर भाभी है कोई बन के आई तो छोटी बहनों का ख्याल करना, मर्द की या माँ बाप का भी ख्याल करना, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मैरी वियर हस्बैंड हैज टू मेनी सिस्टर, दे से दैट इफ नो सिस्टर देन बेस्ट। अल्लाह हू अकबर। असल में आज के हालात में और उस वक्त के हालात में बहुत फर्क पड़ चुका है। उस वक्त के हालात में जैसे आप वो सोसाइटी देखते हैं, वो तो बिल्कुल हमारी आज की सोसाइटी उससे बिल्कुल ही बदल चुकी है। जितनी हमारे अंदर मटीरियलिज्म आ चुका है, जितनी हमारे अंदर सेल्फिशनेस आ चुकी है, जितनी हमारे अंदर ये सब चीजें खराबियां आ चुकी हैं, तो ये सिर्फ एक औरत की बात नहीं है कि कोई औरत ये कहती है, हमको आदमी हैं, औरतें हैं, ससुराल हैं, या सब की मेंटेलिटी उस तरह से डिफरेंट हो चुकी है। आज वो मेंटेलिटीज ही नहीं है, उस तरह की थिंकिंग ही नहीं है, वो सोच नहीं है। आज लेके देवर को भाभी की गोद में बिठा दिया जाता है कि ये आप इसको अब कुछ सलाह कुछ पैसे दें, उसको गिफ्ट दें कि भाभी नहीं शादी हो गया, या देवर जो है वो तुम्हारा यानी ऐसे ही है कि तुम्हारा बच्चा है, या देवर भाभी, देवर भाभी। ये हिंदुओं की चीजें हैं जो हमारे अंदर बिल्कुल सही नहीं। देवर को मौत कहा गया, हमने उसको यानी हमारे यहाँ ये कल्चर है, पता नहीं आप लोगों में है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में ये कल्चर है कि वहां पे गोद में लाके बिठा दिया जाता है देवर को, छोटा देवर हो बड़ा देवर हो, लाके भाभी की गोद में बिठाया जाता है और फिर वो उसको कोई सलामी वगैरह देती है। तो देखिए हमने कितना डिफरेंट कर दिया, फिर देवर भाभी को ऐसे बना दिया कि जैसे ये माँ बेटा है या बहन भाई है या कुछ है, तो ये चीजें भी नहीं है इस्लाम के अंदर, तो नहीं है। अब देखिए उन्होंने छोटी बहनों के लिए लेकर आया, कहीं ये नहीं है कि मेरा छोटा भाई है तो उसको ये देखेगी और कर नहीं, ठीक है। तो इस चीजों के अंदर भी एक बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाना कि अब यही देखे, हमारे बेटे का तो कोई काम नहीं है, अब ये बहू लेकर आए हैं तो अब इसका काम है कि ये हमें संभाले, वो भी एक बिल्कुल एक्सट्रीम दूसरी तरफ भी नहीं चले जाना। एक एक्सट्रीम ये भी गलत है कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनको करना हमारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है, क्या फर्ज है हमारे ऊपर, ये भी गलत है। हम मयाना रवि कहीं पे भी नहीं रही ना, सब जगह पे एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा फिर अगली हदीस को देखते हैं हम। जी नाज़नीन आप बताएं कि हदीस नंबर 931 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर में दाखिल होने लगे तो ठहरने का हुक्म दिया मुसलमानों को, क्यों, इसकी क्या वजह है?
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि आप जब भी कहीं आते थे सफर से तो जाके नफिल पढ़ा करते थे, और ठहरने का इसलिए कि औरतों को पता चल जाए वो रेडी हो सके कि मतलब उनके हस्बैंड आ रहे हैं।
जी शाबाश। यानी आप इससे अहमियत देखते हैं कि जब शोहर घर पे आए तो औरत को किस तरह से होना चाहिए, ये आप अहमियत देखी आपने इससे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली ये तमाम करते थे ठहरने का। ऐसे नहीं है कि आप सारा दिन से नाइट सूट में घूम रही हैं, जिधर हस्बैंड आए हैं घर पे तो आपका नाइट सूट ही चल रहा है अभी तक, या अभी तक प्याज और लहसुन की स्मेल आ रही है आपके कपड़ों से। थोड़ा सा ये नहीं है कह रहे कि दुल्हन बन के आप बैठ जाए, लेकिन थोड़ा सा एहतमाम तो करें कि चेंज कर लें, हाथ मुंह धो लें, कुछ अपने कंघी वंगी कर लें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। बास खवातीन यानी अल्लाह ताला माफ फरमाए हम सबको, और हकूक अदा करने वाले बनाए, ये ना हो कि ये हकूक हमारे सर पड़ जाएं क्यामत के दिन और हमारे खिलाफ एक कोई खड़ा हो कि इसने मेरे हकूक नहीं दिए। तो बास खवातीन बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करती ये शौहर घर आ रहे हैं, या अगर वो घर से ही काम करते हैं तो फिर हमें कोई अपने आप को सीधा भी रखना है, अपना मुंह धो के रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही हुलिये में बिस्तर से उठे और उसी हुलिये में शाम हो गई, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, छोटे हैं, ये है, मैं वैसे है, मेरे पास कहाँ टाइम है, और अब कौन ये चौंचले करे। और बाज ने तो यहाँ तक शेयर किया कि हम जान बूझ के नहीं करते, क्योंकि फिर मतलब है कि शौहर मतलब क्या इसको किस तरह बयान किया जाए कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आए, तो हम इसीलिए इसी तरह रहते हैं ताकि वो जरा दूर ही रहें तो अच्छा है। तो ये सही नहीं है, अगर शौहर कहीं गलत नजरें उसकी पड़ती हैं या कहीं और गलत जगह पे हराम जगह पे उसकी सोच जाती है तो उसकी कसूरवार फिर बीवी भी होती है। अगर वो अपने आप को इस तरह से नहीं रखती, अपने आप की तहारत का ख्याल रखें। देखें लोग आपके मेकअप देख सकते हैं लेकिन लोग ये नहीं जान सकते कि आप तहारत कितनी रखती हैं, पाक साफ कितना अपने आप को रखती हैं। यहाँ पे खास तौर पे देखें, यहाँ पे आया कि जेरे नाफ बाल साफ कर लें। अब कहने को हम कहें कि बहुत शर्म की बात है, लेकिन जब हदीस में आ गई, हम सब खवातीन यहाँ पे बैठी हैं, हमें इसको डिस्कस करने में कोई नहीं वो होना चाहिए कि अब हम शर्म की बात हो गई और मैं कैसे नहीं। देखें कोई भी ये बात नहीं जान सकता, आप खुद जानती हैं, आपके शौहर जानते हैं, अल्लाह जानता है, ठीक है। आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना है, ऐसा नहीं है अंडर आर्म्स से स्मेल आ रही हो या इतनी पसीने की स्मेल हो कि किसी का करीब जाने को बैठने को दिल ना करे, मुंह से स्मेल आ रही हो, या अपने आप को आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स का खुद ख्याल करना है। अब वो ठीक है, हम सिर्फ उन चीजों का ख्याल करते हैं जो कि लोग देख रहे होते हैं कि मेरे अपर लिप्स जो है ना वो सही से थ्रेडिंग हुई हो और ऐसे हो और ये हो, क्योंकि लोगों ने देख लिया, लेकिन मैं अंदर से क्या हूँ वो सिर्फ आपको अल्लाह को राजी करने के लिए और अपने शोहर के लिए आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना। कोई औरत भी ऐसी ना हो कि उसका शोहर उसके पास इसलिए ना आना चाहे कि वो एक बुरे हुलिये में रहती है। हो सकता है कोई शोहर बयान ना आपको करें, आप ये सोचती होंगी मेरे शोहर को तो पता ही नहीं चलता, उनको कहाँ पता चलता उनको, ठीक है नहीं पता चलता होगा आप कहते हैं आपके मुताबिक, लेकिन किसको नहीं अच्छा लगता साफ सुथरा इंसान बताएं। बच्चा भी होता है ना, हमारा अपना बच्चा भी, तो साफ सुथरा बच्चा जब साफ सुथरा हो जाता है, मुंह हाथ धुलाया होता है, आपने चेंज किया होता है तो अच्छा लगता है ना। और अगर गंदा मंदा फिर रहा हो, नाक निकल रही हो, डायपर भरा हुआ हो, अच्छा लगेगा आपको? हालांकि आपका अपना बच्चा किसी वक्त भी बुरा नहीं लगता, लेकिन किस वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि जब वो साफ सुथरा हो। तो जो शोहर के लिए तो बीवी को खास तौर पे अपनी इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। बहुत कुछ है तमाम आप नहीं भी कर सकती, कोई हैवी मेकअप नहीं करने को, ज्वेलरी नहीं पहनने को, कोई शादियों वाले कपड़े पहनने को नहीं कह रही, लेकिन साफ सुथरा रहना और अपना कम से कम सुबह को उठ के अपने आप को सही करना कि आपके बाल कंघी हो, आपका मुंह धुला हो, आपके कपड़े चेंज हो, इसकी तो कम से कम एहतमाम करें। या आप शाम को जाकर, पता है कि शौहर घर आने वाले हैं, देखिए ये कोई सफर से आ रहा हो, आप खुद इस हदीस को लेके सोचें तो उसका क्या दिल चाहेगा, जल्दी से जल्दी घर पहुंचे और रेस्ट करें। हम इतना सफर करके आते हैं जाते जल्दी पहुंचे घर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे उनको वहां पे डिले कराया, इंतजार कराया कि वो लोग तैयार हो जाएं। इससे कितना ये बात का सबक मिलता है, ये कितनी जरूरी चीज है, कितनी जरूरी चीज है, इट्स अ मस्ट। वरना कोई बात नहीं, वो अपने आप को बाद में साफ कर सुथरा कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, इस चीज का खास तौर पे ध्यान किया गया। और फिर हम अपने आप को ऐसे ही रखें, अगर जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शौहरों ने रोज ही घर आना होता है, कोई कोई महीने बाद नहीं आ रहे, जब रोज ही घर आना था तो फिर क्या ऐसे ही रहेंगे? और बाज लोगों के घरों में भी स्मेल और कपड़ों में भी स्मेल और शाम तक उसी तरह मुंह बसोरे हुए फिर रहे, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम हदीस से हमने ये सीख लिया और आज से ही अपने आप के लिए कोशिश के साथ इस चीज को करें। अगर मेरे ख्याल 1 मिनट भी नहीं लगता होगा कि आप लिपस्टिक थोड़ी सी लगा लें, थोड़ा सा अपना आपको सही कर लें, थोड़ा अपना आईलाइनर लगा लें, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें। लेकिन बेचारे वो शौहर जो है ना तरस जाते हैं कि कहीं इनको हम भी देख लें तैयार हुए हैं। आज से हमने इस हदीस की रोशनी में अपने आप को सही करना है। दफाजत हदीजा अपने आप को तैयार कर रही थी और खाना लेकर आ रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए सलाम भेजा हजरत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। तो इसको अब हमने जैसे हम अपना इबादत को देखते हैं ना कि ये इबादत है और ये इससे अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हम करते हैं ना, इसी तरह हमने थोड़ा सा एहतमाम, बहुत नहीं मैं आपसे कह रही लेकिन थोड़ा सा एहतमाम हमने अपने शौहरों के लिए ये सोच के करना है कि इससे मेरा रब राजी हो जाएगा, ये मेरे रब का हुक्म है। जी आदमी वो आएंगे तो हम इस इंशाल्लाह आज अपना रिव्यू मुकम्मल करेंगे, इसलिए हम आराम 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 से चल रहे हैं, किसी को कोई जल्दी तो नहीं है। आज से अगर आप अपने आप को बना संवार के इंशाल्लाह ताला अपने शौहरों के लिए बनाए संवारेंगे तो वो आपको कहेंगे कि और क्लासें लिया करो, ठीक है? फिर उनको बताइएगा भी कि मैंने क्लास में सीखा ये ना हो कि वो कहते हो कि क्लासें जब से इन्होंने लेनी शुरू कर दी और ज्यादा ये लेजी और ज्यादा कि ये भद्दी बन के रहती है, तो फिर तो क्लासों के खिलाफ ही होंगे ना, ठीक है ना? अच्छा आगे देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछेंगे तबीयत ठीक है, एक दिन पूछेंगे ना, जब आप रोज रहेंगी तो फिर नहीं पूछेंगे, ठीक है? मैंने कहा ओवर दुल्हन बनने की नहीं जरूरत है, लेकिन इतना करें कि आप अच्छी लगे। अब जब रोज अच्छी लगेंगी तो फिर उनको फर्क पता चलेगा कि हाँ वाकई क्लास लेती हैं, क्योंकि हम एक दिन सिर्फ अच्छे बन के रहते हैं ना तो फिर वो उन्होंने पूछना ही है कि आज क्या हो गया। इसका मतलब हम रोज सही नहीं रहते, बस एक दिन आज क्लास में सुना है तो शाम को कर लिया, उसके बाद अगले दिन फिर वही सूरत। और अगर आप ग्लासेस लगाती हैं और आपके पास कोई लेंसेज हैं या कुछ हैं, उसके भी तमाम करें कि आप और ज्यादा अच्छी लगें, आप वो भी तमाम करें। यानी जिस सूरत में आप चाहती हैं कि कोई अगर घर आ गया एकदम से तो आपको इस सूरत में ना देख ले, इसी तरह आप अपने शोहर के लिए सोचें कि अगर वो घर आ गए एकदम अचानक से या शाम को आ गए तो मुझे इस तरह ना देख ले। उनके लिए तो हम नहीं सोचते, वो उन्होंने देखा ही हुआ मुझे ऐसे ही, ठीक है कोई बात नहीं। लोगों के लिए हम जरूर सोचते हैं कि अगर उन्होंने मुझे इस हुलिया में देख लिया तो क्या, मैं तो कितनी बुरी लग रही हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह एवरी डे वी डू इट, बिल्कुल जैसे एवरी डे खाना खाते हैं इसी तरह एवरी डे ये भी करें। अच्छा जी आगे देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ पे अलकईस अलकईस, इसका मतलब क्या है? अलकईस अलकईस या जाबिर? जी तैयबा आप बताएंगी। जी औलाद की ख्वाहिश रखना, यानी हमें क्या पता चलता है इससे कि जब कोई इंसान शादी करे तो इसलिए नहीं सिर्फ करे कि बस हाँ अब जैसे यहाँ पे जाबिर का था कि मेरी बहनों का ख्याल हो, ये नहीं सिर्फ कि भाई हाँ मेरे माँ बाप का ख्याल हो कि मैं तो इसलिए बीवी लेकर आया था कि मेरे घर वालों का ख्याल करें, मेरे फलानी चीज का ख्याल करें, इसलिए भी होनी चाहिए कि औलाद की ख्वाहिश हो इसके जरिए। और आज इसमें भी हम उलट गए हैं कि बीवियाँ सिर्फ शौक के लिए लेकर आते हैं कि बस हाँ बीवी हो फन करें ये हो, लेकिन औलाद की हमें कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि औलाद को भी आज हमने बोझ समझ लिया ना। आदम ने अपनी ही औलाद को देखो अपने लिए बोझ समझ लिया, शैतान ने कैसा धोखा दिया। अच्छा जी तो ये हमें पता चलता है हदीस की इस हिस्से से कि इंसान को शादी से ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि उसकी औलाद हो। अच्छा अगर किसी को हक देने में ज्यादा हक दे दिया जाए, शबनम खान आप बताएंगी, हक देने में ज्यादा हक दे दिया जाए, यानी अगर किसी का हक जितना है उससे ज्यादा उसको दे दिया जाए तो क्या ये जायज है? जी शबनम खान जी जी आपको आवाज आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी शकीला आंटी, आप बताएंगी? जी, किसी को उसके हक से ज्यादा दे दिया जाए, कितने किसी के बंदे थे उससे ज्यादा उसको दे दिया जाए, तो इसमें क्या है?
आप मुझसे पूछ रहे हैं?
जी जी जी
जी बिल्कुल, जिस लाइन ने दिया था मैंने अंदाजन पूछा था जी, ये देना किसी को उसके हक से ज्यादा देना मतलब जायज है और ये एहसान है, एहसान भी, और किसी वजह से भी ये दिया जाता है कि अगर मेरा और आप कोई हक है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, आप इनको दे दीजिए, वो दिया जा सकता है।
शाबाश, यानी ये क्या दर्जा है? एहसान का दर्जा है, ये मैं पूछना चाह रही थी। ये एहसान का दर्जा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे भी वापस कर दिए और चीज भी वापस दे दी, और इसमें इतनी प्यारी ये मिसाल है, इसलिए कि दूसरे को बोझ भी ना लगे, दूसरे को बुरा भी नहीं लगा, खरीद भी लिया और वही चीज तोहफे में भी वापस कर दी। ये बहुत ही प्यारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसको हम कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हम किसी के साथ भलाई करना चाहें तो। जी नाहिद आंटी, आप बताएंगी कि जब इंसान सफर से वापस आए तो सुन्नत में क्या तरीका है कि क्या करना चाहिए सबसे पहले? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
मतलब कि सुन्नत के साबित सुन्नत तो हमेशा मस्जिद जाते थे, लेकिन ये कि
हाँ जी, कौन बोल रहा है? ये
सफर वापस आए तो उनको भी चाहिए कि मस्जिद से नमाज पढ़ के आए ना, दो रकअत सफर पढ़ के आए।
ये कौन बोल रहा है? अच्छा, मस्जिद जाके नमाज पढ़ के आए, और औरतें अगर नहीं मसलन मस्जिद हम जा सकते तो क्या करें? जी औरतें फिर घर आके नफल अदा कर लें, लेकिन कम अज कम इस तरह से हम इस सुन्नत को जो आज लोग छोड़ चुके हैं, इसको हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अगर रास्ते में मस्जिद पड़ रही है तो मस्जिद में रुक के दो नफल अदा करके घर आ सकते हैं। ये एक बड़ी प्यारी सुन्नत है, और मर्दों को तो यही चाहिए कि वो मस्जिद में ही नमाज पढ़ के और फिर आए, और ये यानी सबसे पहले अल्लाह के घर में जाए, और वहां पे एक तो खैरियत भी इंसान इस चीज के अंदर, आफियत भी अपने लिए, और के शुक्र गुजारी भी इसके अंदर होती है कि हम आफियत के साथ खैरियत के साथ वापस पहुंच गए। अच्छा, आप लोगों ने जो दुआ मैंने आप लोगों को याद करने को कही थी वो आपने याद की है, जनाबत की, सॉरी यानी मियां बीवी के ताल्लुकात के वक्त की जो दुआ है वो आपने जी, तो ये दुआ बड़ी इम्पोर्टेंट दुआ है कि इसको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि ये आपको शैतान से महफूज रखेगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब जैसे यहाँ पे आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो है वो पसली से पैदा की हुई है, या पसली सबसे टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होती है, तो अगर सीधा करना चाहो तो तोड़ डालोगे और अगर छोड़ दो तो वो टेढ़ी रह जाएगी। इसमें क्या आपको समझ आता है कि क्या है? फरजाना चौधरी, आप बताएंगी इसमें आपको क्या समझ आई? इसलिए कि ये वो हदीस है जिसको बहुत ज्यादा इसका प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखो जी यहाँ पे तो यानी हदीस में तो औरत को टेढ़ी पसली कहा गया और ये हो गया और वो हो गया, तो बहुत ज्यादा इसको यानी मिस यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
जी इसमें ये औरत की फितरत की बात है कि इसमें औरत जो है वो उसकी आदत कुछ ऐसी है कि वो जब अड़ जाए या कुछ उसकी नाकस अकल है कि वो तो उसके साथ उसमें सलूक किया जाए, तो अगर फायदा लेना चाहते हैं तो बस ये कि उसके साथ उसमें सलूक किया जाए कि फितरत और आदत की बात है एक्चुअली यहाँ पे।
सही, यानी बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप अल्लाह ताला की हम ये मानते हैं ना कि हर तखलीक जो है उसकी हम कुरान में भी पढ़ते हैं कि हक के साथ है, यानी जो उसका मकसद है वो मकसद पूरा कर रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि औरत को अल्लाह ताला ने जब ऐसा बनाया है ना तो उसकी भी कोई वजह है, उसका भी कोई रीजन है, और ये जो वो जिस मकसद के लिए पैदा की गई है ये उस मकसद को फुलफिल करने के लिए यही चीज जरूरी थी, तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा ही बनाया। यानी ये बात कहना कि अगर वो असली में सबसे ज्यादा जो टेढ़ा ऊपर का हिस्सा है वो उससे पैदा की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बुराई उसकी कोई बयान की जा रही है, बल्कि इसमें ये बताया गया है कि मर्द को किस तरह से औरत के साथ सलूक करना चाहिए, इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए सलूक करना चाहिए। और बाज लोग, जैसे हमने पढ़ा है ना कुरान करीम में, पिछली ही सूरत में हमने पढ़ा था कि कुरान करीम के बाज लोग टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके अंदर एक ही एग्जाम्पल देख लें कि बाज लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई एक हदीस उठा के, देखा कुरान तो हदीस तो ये कहती है कि तुम तो वो ही टेढ़ी पतली से पैदा, और उसको एक ताना देने का जरिया बन लेते हैं कि बजाय इसके इस चीज को अंडरस्टैंड करने के कि देखो एक चीज की तखलीक ही ऐसी है तो तुम उसके साथ उसी तरह से चलो, ये नहीं है कि हाँ तुम भी टिट फॉर टैट करने लगो, बल्कि तुम अपनी यानी अकल के साथ, समझ के साथ उस तरह से ही डील करो, तो बजाय इसके कि उसी तरह डील किया जाए वो इसको एक तंज का जरिया बना लेते हैं और औरत को बार बार ताने दिए जाते हैं कि तुम ऐसे हो और ऐसे हो, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इसमें हमें जो यहाँ पे अगर किसी ने हदीस पढ़ी हो तो बजाय इतने टुकड़े को लेने के वो फिर आगे यही ये भी देखे, ये भी टुकड़ा ले ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ, ये चीज तो लेते ही नहीं, आधी इतनी सी हदीस पकड़ ली और उसको लेके और खूब उछाला और खूब औरत को तंग किया, तो हुस्ने सलूक वाली कहां चीज चली गई। फिर हमने ये पढ़ा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी है कि जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि चलो बच्चा जाने दो इसको, तो इसी तरह औरत के लिए भी कि चलो देखो इसके साथ हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करें, इस बेचारी की यानी ऐसे ही ये तखलीक हुई है, इसका नहीं कसूर ही इस तरह से ही बनी है बस, तो इसी तरह इसकी आदत है। लेकिन अगर कोई समझदार होगा तो ये सोचेगा ना, और अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो खुद ही टेढ़ा होगा तो फिर वो बस यही ताने देगा कि तुम तो टेढ़ी पसली से बनी और तुम तो, उनको कानों में बस एक हदीस पड़ जाती है और फिर वो उसको लेके दूसरों को टीज करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर उनको बाकी हदीस का टुकड़ा भी लेके उनको ये बात पता होनी चाहिए कि मुकम्मल हदीस फिर पढ़ लें कि क्या है। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे जी कुलसुम आप बताएंगी कि बनी इसराइल का कहा गया कि अगर बनी इसराइल ना होते तो गोश्त ना सड़ता और अगर हवा ना होती तो औरत अपने शौहर से दगा ना करती, इसका क्या मतलब है?
वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर जो गोश्त की बात हुई है वो बनी इसराइल पर मतलब फलवा आया था तो उन्होंने इसको स्टोर करना शुरू कर दिया था, तो बतौर सजा उनको जो है उसमें बदबू डाल दी गई थी ना,
तो उनको कहा गया था कि स्टोर नहीं करना,
उन्होंने किया था ना, तो इस वजह से बतौर सजा उसमें बदबू पैदा कर दी थी।
और दूसरी बात कि औरत अपने शौहर से दगा ना करती अगर हवा ना होती,
वो हजरत हवा ने हजरत आदम को जो उन्होंने वो दरख्त के पास गया था जिसकी वजह से वो जन्नत से निकाल दिए गए थे, तो इसलिए यानी उन्होंने ही तरकीब दी थी ना हजरत आदम को, तो इस वजह से यहाँ पर उनका कहा गया।
तो दगा देने का मतलब यहाँ पे क्या, यानी इस किस्म की दगा या कोई खयानत है जो कि औरत करेगी?
यानी अल्लाह ताला ने मना फरमाया था ना, तो लेकिन हजरत आदम हजरत हवा के कहने पे यानी
सही
चले गए
थे इसके पास,
इसकी वजह से ये
ठीक है,
तो एक तरह की
सही जज़ाकअल्लाह खैरन। अच्छा, यहाँ पे इसको ये नहीं समझना आपने कि खयानत करना, हम खयानत जो एक बहुत बैड मीनिंग लेते हैं खयानत का, कि यानी अल्लाह ताला माफ करे कोई किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट को हम खयानत समझते हैं, बेवफाई शोहर से करना इसको हम खयानत समझते हैं, तो ये वो खयानत नहीं है, बल्कि वैसे ये खयानत का लफ्ज इसलिए आया कि उन्होंने उनकी वजह से यानी आदम अलैहिस्सलाम भी मजबूर हो गए थे कि उन्होंने तरगीब दी थी ज्यादा, उन्होंने कहा था कि ये खा लेते, तो इस वजह से ये कहा गया, वरना ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी खयानत की हो कि अपनी इज्जत में कोई खयानत की हो, क्योंकि पैगंबरों में से किसी की भी बीवी ने कभी भी ऐसी खयानत नहीं की, ये याद रखेगा, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हो या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, किसी ने अपनी इज्जत के ऊपर कोई नहीं ऐसी चीज आने दी। ठीक है, वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि औरत ने ही वो करा था, लेकिन जब कुरान हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही पिसले, दोनों ने ही फल खाया। तो हाँ, तरगीब यानी जैसे एक औरत एक चीज को कहती कि हम देखें ऐसे कर लेते हैं, और ये तरगीब तो दी हजरत हव्वा ने, मगर ऐसा नहीं था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यानी उनका कोई फैसला नहीं था और उनकी कोई बीच में अपनी इस चीज की तरफ नई इंक्लिनेशन हुई, बल्कि जब फल की तरफ बात आती है तो फिर खाने की तरफ दोनों की बात आती है। मगर हाँ, यहां तक सही है उनका भी, क्रिश्चियंस का भी, कि तरगीब दी थी, दोनों ने नहीं कहा था, तरगीब ज्यादा हजरत हव्वा ने दी थी, हजरत आदम को कहा था कि ये खा लेते हैं। अब तलाक के मसले मसाइल आ गए, और तलाक के हमने काफी हद तक पहले भी कवर किया हुआ है। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसी चीज है जो कि रह गई हो हमने, के पहली तलाक, रजी तलाक, तलाक के बायना, और इस चीज का हमने कवर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जस्ट उनके साथ नहीं दिया दीन में, हाँ जी उनकी ये थी सिर्फ खयानत। अच्छा, यहाँ पे कौन रह गया, शहनाशा आप बताएंगी कि क्या हैज में, हैज के दौरान दी गई तलाक क्या हो जाएगी या नहीं होगी?
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी उस्ताद, तलाक तो हो जाती है लेकिन देना नहीं चाहिए हैज के दौरान।
ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब तहसीन आप बताएंगी कि यानी मसनून तरीका, यानी जो शरई लिहाज से सही तरीका, मसनून से मतलब ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तलाक दी उसे, यानी जो सही तरीका है तलाक देने का वो क्या तरीका है? जी तहसीन।
वालेकुम
अस्सलाम रहमतुल्लाह।
सही तरीका ये है कि जब औरत हैज से पाक हो जाए, हैज मतलब क्लियर हो जाए, नहा ले, तो उसके बाद फिर शौहर से तलाक दे।
उसके बाद शौहर ने उसे ताल्लुक कायम कर लिया, उसके बाद फिर दे दे?
नहीं, फिर उसे वेट कर, अगर उस ताल्लुक कायम कर लेगा तो फिर उसके दूसरे हैज तक वेट कर।
आपको हाँ बिल्कुल, आपको फिर ये बताना है कि उस तोहर में जिसने ताल्लुक ना कायम किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, उस तोहर में जिसमें ताल्लुक ना कायम किया हो उसमें तलाक दे। ये नहीं है कि बस ठीक है हैज आया उसके बाद पाक हो गई, उसके बाद अगर ताल्लुक कायम कर लिया तो उसके बाद नहीं, लेकिन अब फिर अब वेट करे, फिर दूसरा पीरियड आएगा, फिर वो उससे साफ सुथरी होगी और फिर तलाक दे सकता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देखिए तलाक देने के लिए इसका मतलब है कोई बहुत ही पहले ये सोचेगा कि भी हाँ अभी है कि नहीं हुआ, और इस तोहर में कहीं मेरा ताल्लुक तो नहीं कायम हुआ, यानी कितना कूल माइंडेड होके सोचने की बात है। इसमें तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसान इतने गुस्से में और तलाक 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 कहता रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज को सोचना चाहिए कि इस्लाम के अंदर जो ये जो लोग कहते हैं कि भाई गुस्से के अंदर कह दिया, गुस्से के अंदर, ठीक है गुस्से के अंदर ही तलाक दी जाती है, मगर अगर जो शरई तरीका देखा जाए तो उसमें तो गुस्से में भी आया भी हुआ तो उसको पहले सोचना है ना कि कौन सा ये हैज चल रहा है, या पाकी है तो अब हैज तो नहीं है, और अगर पाकी है तो फिर कौन सी पाकी है। तो ये चीज को जहन में रखना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी ने हैज की हालत में तलाक दे दी है तो अब इसके ऊपर क्या, वो उन्होंने बताया कि तलाक तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर फिर क्या होगा, क्या उसके ऊपर क्या उसका कोई नुकसान है या क्या है? शबनम खान आप बताएंगी। जी शबनम खान। जी
अस्सलाम
वालेकुम।
तलाक तो वाकई हो जाएगी, आप क्या कह रही है, सॉरी मैं सवाल नहीं समझी।
हाँ जी, तलाक तो वाकई हो जाएगी, लेकिन इस बंदे को क्या कुछ है इसके ऊपर भी,
मतलब इसको ताल्लुक इस दौरान ताल्लुक नहीं कायम करेगा ना वो?
नहीं, हैज की हालत में अगर तलाक दे दी है तो तलाक तो हो गई, लेकिन अब इस आदमी के ऊपर भी कुछ है, यानी अब वो गुनाहगार होगा ना, उसको किसके ऊपर गुनाह है,
मतलब मना क्या गया ना, हैज की हालत में तलाक नहीं दे दी, लेकिन अगर उसने दे दी है तो वो तलाक वाकई हो जाएगी, मतलब वो शुमार होगी उसकी,
बिल्कुल शुमार भी होगी और वो गुनाहगार भी होगा। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि वो इंसान गुनाहगार होगा, ऐसे नहीं वो कर सकता कि अगर वो दे भी दिया तो क्या हो गया, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई मना तो नहीं, नहीं मना है, और उसने अगर इस चीज की खिलाफ वर्जी की तो उसका गुनाह है, उसको तो गुनाह समझते ही नहीं ना, जब मर्जी चाहा उठे और बस बोल दिया, और इस चीज को गुनाह समझते ही नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो बार बार बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो चीज मबगूज है वो तलाक है कि, या क्या ये बात सही है?
मतलब वो जो कहा जाता है कि हराम चीजों में सबसे ज्यादा
जी
उसकी बात कर रही
जी जी
नापसंद,
हाँ जी हाँ जी जी, तो क्या ये बात सही है? हाँ, तो ये ज़ईफ हदीस है, जान लें कि ये ज़ईफ हदीस है, ठीक है जी, ये ज़ईफ हदीस है। आगे और किसकी बारी नहीं आई है वो मुझे बताएं, जिसकी बारी नहीं आई है यहाँ पे बताएंगे मुझे। अच्छा राजिया, राजिया आप बताइए कि अगर कोई आदमी किसी को तलाक नहीं देता किसी औरत को, लेकिन वो उसे अलग होना चाहती है, अब औरत तो तलाक दे नहीं सकती, तो क्या करेगी औरत? क्या उसके पास कोई राइट है? अब इसके ऊपर भी हाँ औरतें बहुत रोती हैं, हाँ ये आदमी को तलाक का राइट है, हमारे पास क्या है, हमें भी तलाक का राइट होना चाहिए, औरत को क्यों नहीं तलाक का राइट? तो उसके पास क्या राइट है जी राजिया? इनका अनम्यूटेड है, कहाँ पे हैं ये, मुझे इनका नाम नहीं नजर आ रहा जी, आप मौजूद है इसमें? फोन पे नहीं है, अच्छा कौन और रह गया? नहीं, मैंने उनसे तो पूछ लिया, और किसी का रह गया है जिसका मैंने नाम नहीं लिया? ठीक है, तो अच्छा अब हम देखते हैं इसके अंदर, फिर हम यहाँ पे ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब आप लोग सबके तो हो गए, नाम लिए जा चुके हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ पे वो मामला आता है कि जब औरत चाहती हो कि वो आदमी से अलग हो जाए और मर्द तलाक नहीं देना चाहता, तो फिर अब खुला का मरहला आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए बात, क्योंकि इस चीज को भी लेके बहुत एक्सप्लॉयट किया जाता है जी, औरत बेचारी वो तो तलाक दे नहीं सकती, आदमी को तलाक का हक है, वो तो तलाक तलाक कह के चलता करता है। तो आपको ये इतनी अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि वो ऐसे ही तलाक 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 बोल के और कह के घर से निकल जाओ, बस अब तुम कोई नहीं मेरी रही, एक मिनट में तलाक का लफ्ज कह के उसको घर से नहीं निकाल सकता। आपको पता चल गया ना ये बात? तो ये जो हमें हर वक्त कही जाती थी, हम हमेशा से यही बात सुनते थे कि ये क्या बात हुई, औरत के साथ कितना बड़ा जुल्म है, तो इस्लाम ने कोई जुल्म नहीं किया। 3 दफा कह दे, 10 दफा कह दे, 20 दफा कह दे, अभी एक ही तलाक हुई है, अभी उसको इसी घर में रहना है और उसका हक क्या है, अगर इस दौरान आदमी फौत भी हो जाता है तो उसकी विरासत में से इसका हिस्सा है, इसका ना नफका, इसका पहनना ओढ़ना खाना पीना सब इस आदमी के जिम्मे है, क्योंकि अभी तक वो उसकी वाइफ है। जब तक इद्दत खत्म नहीं हो जाती, इद्दत के दौरान वो उससे रुजू कर सकता है, इद्दत खत्म हो जाती है तो तब वो रुखसत हो जाएगी अगर इस आदमी ने रुजू नहीं किया, और जब वो रुखसत हो जाएगी तो फिर उस यानी उसके घर से चली जाएगी। अब इसके बाद ये आदमी जो पहला शोहर था, ये भी इसी तरह जैसे बाकी तमाम आदमी होते हैं, ये चाहे तो दोबारा रिश्ता डाल सकता है और दोबारा इससे निकाह हो सकता है, और ये चाहे तो फिर औरत कहीं और निकाह कर ले अगर उसकी मर्जी है तो, कहीं इसके साथ ना करे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम जो ये 3-3 तलाकों का कह के और फिर सोचते हैं कि बस चली जाएगी, वो चीज नहीं है, इस चीज को समझ लेना चाहिए हमें। अब अगर औरत चाह रही है कि मैं खुला ले लूं, अब खुला का भी आपको पता चल गया, तो वो क्या करेगी, वो उसमें कोर्ट में जाएगी और वहां पे जाके उनको कहेगी कि मैं इससे खुला लेना चाहती हूँ। आप जज फैसला करेगा कि किस वजह से औरत खुला लेना चाहती है, ये भी क्यों किया गया, ये नहीं है इसमें औरत के ऊपर कोई ज्यादती है। ये सारी जो ज्यादती के केसेस है ना, हमें जो हर वक्त बताया जाता था कि औरत मजलूम है बेचारी, इस्लाम के अंदर इसके कोई हकूक नहीं, जब हम हदीस पढ़ते हमें अच्छी तरह पता चल जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब वो जाके अदालत के अंदर उसको अपना सारा केस बताएगी जज को, तो वो क्यों फैसला करेगा, ये औरत क्यों नहीं फैसला कर सकती? इसलिए कि औरत इतनी जज्बाती होती है कि वो भी चाहती है बस अब बस खत्म, दैट्स इट, बस छोटी छोटी लड़ाइयों पे ही औरतें कई अपने हस्बैंड को कहने लगती है बस मुझे तलाक दे दो, बस खत्म करो ये बात। अरे भाई अपने लिए क्या मांग रही हो, कुछ सोचती हो? यानी इतनी बाज दफा जुबान की तेज होकर ऐसी बात करने लगती है और ऐसे अल्फाज मुंह पे ले आती, खुद ही मांगने लग जाती है। तो यानी औरत इतनी ज्यादा जज्बाती होती है, तो जब अब अदालत देखेगी कि हाँ ये कोई ऐसी बात है कि यानी वाकई ये औरत नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ, और कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे ये भी कह सकती है कि भाई मैं मुझे इसकी मुझे ये नहीं पसंद है, बस मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, कोई भी रीजन हो सकता है, तो फिर अदालत फैसला कर देगी और फिर वो इसका खुला हो जाएगा। और खुला की इद्दत कितनी है ये आपको बताना चाहिए कि खुला की इद्दत यानी एक दूसरे से अलग हो जाना ना, उला की इद्दत एक है ऐसे, और इसको एक ही तलाक समझा जाएगा, ठीक है? एक तलाक समझा जाएगा। इसका मतलब है कभी जिंदगी में अगर चाहें तो फिर उस आदमी के साथ निकाह हो सकता है, ठीक है। और अगर आदमी नहीं देना चाहता खुला, और नहीं, औरत ये भी कर सकती है कि उसको मेहर वापस कर दे और कहे कि मुझे इसकी कीमत के ऊपर खुला दे दो, क्योंकि बाज दफा अब हमारे यहाँ तो ऐसी कोई मसला ही नहीं, क्योंकि मेहर ही नहीं अदा हुआ होता तो फिर क्या, लेकिन वहां पे मेहर बड़े बड़े मेहर होते थे, हो सकता कोई जायदादें हो, कोई कुछ हो, तो वो मेहर वापस कर दे तो फिर मैं तलाक दे दूंगा, तो फिर वो ये भी कर सकती है ताकि आदमी उसको तलाक दे दे, क्योंकि बाज दफा वो अपने चीजें जाती भी देखते हैं तो फिर नहीं देते तलाक। तो इस तरह से हमें ये अच्छी तरह पता चल गया खुला और तलाक में फर्क और किस तरह से ये होगी। और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि तलाक बिल किनाया, तलाक बिल किनाया क्या होती है कि कोई तलाक का वर्ड नहीं बोला मगर तलाक उसकी इंटेंशन तलाक की थी, अगर ऐसी चीजें ऐसे अल्फाज बोले कि जिसमें तलाक वर्ड नहीं है मगर बस मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुमसे अलग हो रहा हूं, बस हमेशा के लिए तुम मुझसे मेरे लिए हराम हो गई, बस खत्म हो गया हमारा मामला हमारे बस यार, और उसके अंदर इंटेंशन ये हो कि बस मेरी तलाक है इसके साथ, तो फिर भी तलाक हो जाएगी, इसके अंदर ये नहीं है कि भाई हाँ स्पेसिफिक ही है तो फिर होगी, ठीक है। क्योंकि तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी नीयत नहीं थी, तलाक बोल के भी नीयत नहीं थी, एक बार बहुत कहते हैं कि हाँ नीयत थी, तलाक की नीयत थी, तो ये तो अब उस बंदे को ही पता है कि उसकी क्या नीयत थी और क्या नीयत नहीं थी, और उसको ये देखना चाहिए, इतना फिर तकवा होना चाहिए कि अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है जी इशारे से। अच्छा, और फिर अगर तलाक लिख के दे दिए तब भी तलाक हो जाती, फोन पे दे दिए तब भी तलाक हो जाती है, और अब तो खैर हमारा इतने एडवांस जमाने में रहते हैं कि किसी ने मुझे बताया कि फेसबुक पे किसी ने किसी को तलाक दे दी और उसके बाद कह दिया कि मैंने नहीं दी और सारे लोगों ने देख भी लिया, अल्लाह ताला माफ करे हमारे इन चीजों से। तो ये हम यहाँ तक इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को तो ये हमारा काफी ये अभी भी सबक रहता है, और इसके अंदर लेकिन आपको असल जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए कि तलाक का क्या तरीका है शरीयत के मुताबिक, खुला का क्या तरीका, उसके अंदर कितनी यानी इद्दत की मुद्दत क्या है, दूसरे तलाक में कितनी इद्दत की मुद्दत है, और ऑप्शंस क्या हैं औरत के पास इसके बाद, और उसके अलावा जो खुला है वो किस सूरत के अंदर होता है और कैसे लिया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये तलाक जो किनाये में दी जाती है ये भी मालूम होनी चाहिए। अब हम चूंकि आप लोगों सबकी बारी हो चुकी है तो हम आगे रिव्यू, तो मैं फिर इसका समरी कर सकती हूँ, रिव्यू मैं किसी के साथ करूँ फिर, क्योंकि सब लोग तो आते ही नहीं है, तवज्जो नहीं देते शायद कि हम आ जाए रिव्यू सेशन में। नहीं, हम लियान तक तो पहुंच ही नहीं सकते, यहाँ तक ही हम करते हैं इंशाल्लाह ताला, आप लोग यहाँ पे करेंगे। आगे वाली ज्यादा तो इतने ज्यादा उनमें अहकाम नहीं है, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कब मुतालबा किया था कि हमें कुछ ज्यादा खर्चा मिलना चाहिए, हमारे हालात बेहतर होने चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, ये कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, जब फतुहात हो गई थी ना, जब ज्यादा यानी मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए थे, कशाइश हो गई थी, तो तब उन्होंने भी ये मुतालबा किया था, तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया फिर। जी ईला, बिल्कुल ईला किया था, और ईला की मुद्दत मैक्सिमम मुद्दत क्या है, कुरान करीम में आई है ये 4 मंथ्स है, शाबाश। तो यानी 4 मंथ्स तक आदमी अपनी बीवी से दूर रह सकता है, उसे कोई ताल्लुक नहीं करेगा, तलाक नहीं वो होगी लेकिन 4 मंथ्स तक दूर रहेगा कि यानी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, लेकिन 4 मंथ से ऊपर नहीं ये कर सकता। 4 मंथ्स के बाद क्या ऑप्शन है, 4 मंथ्स के बाद क्या करना होगा, 1 मंथ नहीं है, 4 मंथ है इलाज। आइदर रजू करें या फिर तलाक दे दे, शाबा है। हाँ, आइदर रजू करें या टू कीप और टू लीव, बिल्कुल, यानी चाहे तो रखे नहीं तो, यानी ऐसे नहीं कोई भी कंटिन्यू कर सकता कि बस सारी जिंदगी के लिए ना पूछा ना कुछ है, वो कहीं पड़ी हुई और कोई कहीं, और बस अब ना कोई ताल्लुक ना कोई वास्ता ना कोई कुछ, ये नहीं कर सकते। इस्लाम ने औरत के हकूक को कितना सेफ गार्ड किया। किसी गैर मुस्लिम ने कहा था कि अगर मुझे ये पता ना होता कि ये, उसने तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, वो तो जाहिर है ये यकीन रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी हुई है, तो मैं समझता कि ये किसी औरत ने लिखी है किताब, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें औरतों के हकूक की बात है। अंदाजा कर सकते हैं आप, फिर भी मुसलमान औरतों को चुके ना अपने हकूक का पता, ना कभी कुरान सीखा, ना कभी हदीस का पता, तो फिर वो कहते हैं हमारी तो साथ बड़ी ज्यादती हुई है इस्लाम में। तो ईला की मैक्सिमम मुद्दत 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं या तो उसके साथ रुजू करो या फिर उसको छोड़ दो। आप ऐसे किसी को लटका के नहीं रख सकते कि बस हाँ पड़ी भी है तो पड़ी रहे, नहीं कि मैं उसको जरा सजा दूंगा अब मैं इसकी तरफ आऊंगा ही नहीं, ये नहीं कोई आदमी कर सकता। अनलेस के हाँ ऐसे हो जैसे कि कोई लोग जॉब के लिए चले जाते हैं किसी बैरून मुल्क, नहीं आ पाते, नहीं इतनी उनको इजाजत मिलती कि हर 4 महीने बाद आए, दोनों की आपस के अंदर रजामंदी से उस साल बाद एक दफा आ सकता है तो वो ठीक है कि आपस की रजामंदी के साथ, लेकिन ऐसे नहीं कोई कर सकता कि खुद अपनी मर्जी से ऐसा कर ले और बीवी पीछे बैठी हुई है और उसको कोई तवज्जो नहीं है और कोई उसे कॉन्टेक्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ माशरों में कई दफा होता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की बात आई है कि वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिस उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई थी वो छोटी उम्र थी, और हमने इसमें भी बहुत प्रोपेगेंडा देखा है कि लोग कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र की लड़की से निकाह किया, जो कि उस जमाने के अंदर बहुत कॉमन था और इसमें कोई हरज नहीं समझा जाता था, और यानी लड़कियां भी इतनी मिच्योर होती थी, जल्दी मिच्योर हो जाती, जल्दी बाले हो जाती थी, तो जो इतने ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे उन्होंने भी कभी ये उंगली नहीं उठाई कि इन्होंने छोटी उम्र की लड़की से शादी की, हालांकि कितनी उन्होंने बातें बनाई। तो ये बात क्यों नहीं बनाई, इसलिए कि ये उस जमाने में हुआ करता था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ईला के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो आपने अपनी अजवाज को ये ऑप्शन दिया कि अगर वो चाहती हैं तो अलग हो जाएं और अगर वो चाहती हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्हीं हालात में रहें। इसमें सबसे पहले किस बीवी से पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बिल्कुल उनसे सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था। और जब, ये भी आपको मजे की बात बताऊं, जब उन्होंने बता दिया कि मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन आप ये बात दूसरी बीवियों को ना बताइएगा कि मैंने क्या ऑप्शन चूज किया। अच्छा, फिर हम आप यहाँ पे देखते हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें और बीवियों की बातें, और इसके अंदर हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो भी इंसान थी और बहुत नेचुरल बातें हैं। जब शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है किसी को तो फिर इस तरह की बातें हो जाया करती हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी अनोखी अनहोनी बात नहीं कि हाय उन्होंने ऐसी बात की, हाय तो ऐसे हो गया, तो इसके अंदर ये हमें बातें मतलब ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल बात है। और ये सारी बातें कोई इल इंटेंशन नहीं थी, बल्कि ये सारी बातें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का टाइम लेने के लिए थी। और फिर हमने देखा हज़रत उमर किस तरह से अपनी बेटी को कैसे समझाते हैं, और इसमें बाप या माँ जो लड़कियों की माँ हैं या लड़कियों के बाप हैं, बेटियों के बाप हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी नसीहत पता चलती है कि कैसे अपनी बेटी को सबसे पहले समझाया जाए, सबसे पहले उसको कहा जाए। और फिर जब हज़रत उमर को ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद तलाक दे दी है अपनी बीवियों को, तो वो क्या कहते हैं, हाँ यही होना था, मुझे पहले ही पता था। जैसे हम कहें मसलन हम किसी का सुने के हर बात मना करते हैं किसी को कि भाई इस तरह की रैश ड्राइविंग ना करो, और फिर एक दिन पता चले कि ला माफ करे कोई हादसा हो गया, तो आप कहते हैं मुझे पहले ही पता था ऐसा तो होना ही था। इसी तरह वो पहले ही देखते थे कि ऐसी कोई बातें उनको कान में पड़ती रहती थी कि ये इस तरह से करती हैं, तो उन्होंने इसीलिए जो ही सुना तो फौरन यही फरमाया कि मुझे पता था कि ऐसे ही होना, और वो इससे बहुत घबरा गए। फिर हम यहाँ पे ये भी देखते हैं, हजरत हफ्सा के पास जब आके उन्होंने पूछा कि क्या तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देती हो बातों का, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन तक पूरा नाराज रहती हो, तो उन्होंने फरमाया हाँ हम तो ऐसा करते हैं, कभी जवाब भी दे देते हैं। तो हालांकि अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन आपने देखा कि कितना नेचुरल ताल्लुक, एक जैसे मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है उस तरह से। अब हम बाज दफा इस तरह से सोचते हैं कि औरत को बस कुछ नहीं आगे से बोलना, वो रोबोट की तरह बस रहे, ऐसा नहीं होता। इंसान है और इंसानों से कभी कभी ऊंची आवाज में भी बोलेंगे, कभी जवाब भी दे देंगे, कभी कुछ भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें अपनी बीवियों के साथ जो मोहब्बत और जो नरमी का मामला था, वो हमें पता चलता है यहाँ पे, वो हमें पता चलता है कि कितनी नरमी थी और कितनी मोहब्बत थी। होकर आए तो बेटी को समझाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे वही बात हमें बिल्कुल पता चल रही है कि बेटी अपनी चाहे शौहर से, चाहे अपने इन लॉ से, चाहे किसी चीज से में नाराज हो क्या है, तो ना कि फौरन आग बगोला होके अपनी बेटी की साइड पे खड़े होके और फिर दूसरों से लड़ना शुरू कर दें, सबसे पहले उसको समझाना चाहिए। इसी तरह घर बसाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हजरत उमर ने फरमाया कि तुम उस औरत की वजह से धोखे में ना आना जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर ली है, तो उनका इशारा किस तरफ था? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की तरफ। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की कितनी अहमियत थी। इसके बावजूद कुछ लोग उनको जो उनके खिलाफ जुबान दराजियां करते हैं या उनको बुरा कहते हैं, तो वो ये देख लें कि हजरत उमर की जुबान से भी पता चलता है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की जो अहमियत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। और जब वो लेकर ये बात हजरत उम्मे सलेमा के पास जाते हैं, तो उन्होंने भी आगे से कैसा जवाब दिया कि अब आप हमारे अंदर दखल अंदाजी करेंगे। यानी मियाँ बीवी के जो भी मामलात होते हैं उसके अंदर उनको ही इसको हैंडल कर देना चाहिए, एक हैंडल करने का वो होना चाहिए, क्योंकि हजरत उम्मे सलेमा के ये रिश्तेदार हैं, कोई बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन कोई भी जो, यानी अगर लड़की का बाप है वो तो जरूर अपनी बेटी को समझाए, लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आके तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम वो क्यों करती हो, या वो आदमी को करने शुरू हो जाए, ये सही नहीं है। जितनी दखल अंदाजी होगी इस रिलेशनशिप में उतने ही आप इसको बिगाड़ देंगे। थर्ड पर्सन को इससे आउट रहना चाहिए, अनलेस बहुत जरूरत हो और वो आपको खुद हेल्प के लिए बुलाएं कि आप हमारी कोई सुलह करा दें, या आप हमें समझाएं, या आप हमारे साथ बैठें कोई काउंसलिंग करें, तब बीच में पड़ना चाहिए। ये जो हम, चाहे हम नंद हैं या सास हैं या हम कोई भी हैं रिश्ते में, चाहे हम बेटी की माँ हैं, चाहे बेटी के बाप, चाहे बेटी की बहन हूँ, चाहे लड़के की तरफ की बहन माँ हूँ, किसी तरफ का भी, मैं कह रही हूँ किसी एक तरफ को नहीं, मैं कहती कि वो ना दखल दें, मगर किसी को भी नहीं दखल देना चाहिए। लेट देम हैंडल देम सेल्व्स। ये मामलात ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, याद रखें। इनके अंदर इंटरफेरेंस और बेजा इंटरफेरेंस वो सही नहीं है। अब हजरत उम्मे सलेमा ने जब ये जवाब दिया है, तो इस चीज को ये नहीं है कि हजरत उमर लेके शिकायत लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाएं कि देखें जी उन्होंने ये कहा है आगे से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर गुस्सा करें, नहीं, बल्कि हजरत उम्मे सलेमा इन पे गुस्सा कर रही है और ये कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने मुझे ऐसी गिरफ्त की कि मेरे गुस्से को ठंडा कर दिया कि मैं तो बस वहां से रवाना ही हुआ। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि यानी इंटरफेरेंस किसी की भी नहीं होनी चाहिए। देन व्हाट? हाँ, जाहिर है जब ऐसे अब्यूसिव होंगे तो जाहिर ही बात है कि फिर किसी की इंटरफेरेंस भी होगी। पहले सबसे अपने मामलात को अपने घर में हैंडल करें, किसी को भी नहीं करने दें। देखिए हजरत उम्मे सलमा ने इजाजत नहीं दी हजरत उमर को भी कि वो इंटरफेयर करें, और हजरत उमर को इस चीज के अंदर डिस्करेज किया कि आप कौन होते हैं कि आप हमारे मामला में दखल अंदाजी करें। अब आप यहाँ पे भी दखल अंदाजी करेंगे कि यानी मियाँ बीवी का मामला इतना प्राइवेट होता है कि इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन आके इंटरफेरेंस करे, दैट्स नॉट राइट। चाहे वो हजरत उमर ही थे, अब उनसे कोई नाइंसाफी की बात तो नहीं हो सकती थी। तो हमारे आज कोई उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो है नहीं। अब कहीं ना कहीं कोई बायस हो जाएगा, कोई किसी का तरफदार हो जाएगा, चाहे कोई लड़की तरफ का है तो उसकी तरफ हो जाएगा, लड़के ही तरफ का है तो उसकी तरफ हो जाएगा। इंसाफ की बात कम ही लोग कर सकते हैं, तो ऐसी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। खुद ही यानी ज्यादा बन के, और कि हम बस मामले सुलझाएंगे और हम बहुत बड़ी चीज हैं और हम इंटरफेयर करेंगे, नहीं करें कभी भी इंटरफेरेंस। लेट देम हैंडल। कोई आप देखते भी हैं कि अरे हमारी भाभी तो बहुत जवाब दे रही है हमारे भाई को, या मेरी बहू तो बड़ी आगे बढ़ बढ़ के बोल रही है मेरे बेटे को, तो आपका काम नहीं कि आप इंटरफेयर करें। उसके शौहर है वो खुद ही उसको बताए, आपका भाई है वो खुद ही उसको बताए, वो उनका काम है। या आपकी बहन है, आप देख रहे हैं कि बहनोई तो बड़ा उसको डांट रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है, मैं तो नहीं ये बर्दाश्त कर सकती। या मेरी बेटी है तो उसका शौहर तो बड़ा उसके साथ ऐसे कर रहा है। तो नहीं, आप बीच बीच में कूद कूद के मत आए। यहाँ पे क्या है, देखिए हजरत उम्मे सलमा का, उनको उनको पता चला है कि इनकी बीवियां जवाब देती हैं, तो वो जाके उनको समझाने लग पड़े। वो कह रही नहीं आपका नहीं काम क्या आप हमें समझाएं, अब अपने काम से काम रखें। ये हमारे शौहर का काम है कि वो हमें कहेगा कि अगर ये लिमिट्स हैं आपने इसको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि थर्ड पर्सन को इजाजत नहीं है। ये बात समझ आ गई सबको अच्छी तरह? ठीक है। इसी तरह आप ना सिर्फ ये कि हम इंटरफेयर ना करें, बल्कि हम अपने रिलेशनशिप्स में किसी को इंटरफेरेंस की इजाजत भी ना दें। अगर हमारी अम्मी कूद के बीच में आ रही है और हम उनको फोन करके बता रहे हैं अम्मी ऐसे उन्होंने कहा और ऐसे फिर मैंने कहा, और अम्मी अब बीच में कूद के आ रही है कि तुम्हें तो ऐसे उसको नहीं कहना चाहिए था, और वो तुम हमारे दामाद ने कैसे तुम्हें ऐसे कहा, तो आपको भी नहीं चाहिए कि आप अपनी वालदा को इतनी यानी ये दें कि वो अब इंटरफेयर करें। सिर्फ हमें ससुराल की तो बुरी लगती है इंटरफेरेंस, अपने वालों की इंटरफेरेंस बुरी नहीं लगती बाज दफा। और हम उनको ये राइट देते हैं कि वो इंटरफेयर करें, नहीं ये राइट नहीं देना, ये किसी का भी नहीं राइट। अब ये उम्मे सलेमा के रिश्तेदार हैं हजरत उमर, नहीं आपको भी राइट नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपकी ही साइड ले रहे हैं, लेकिन वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए खतरनाक है। ठीक है। अब देखें मसलन है कि आपके भाई को बुरा लग रहा है कि आपके साथ आपके शौहर कैसे बात करें, तो उनको इतनी इजाजत ना दें कि वो बीच में आके करें, वो यही समझाएं कि नहीं ये हमारा मामला है, हम खुद ही इसको डील करेंगे। ठीक है जी। आपने क्या पूछा? इज इन रिलेशन, ये बात नहीं मैं समझी। तो ये बहुत प्यारी बातें हैं जी। हाँ वो रिलेटिव थे हजरत उम्मे सलमा के। अच्छा अब जब भी उनके पास गए ना और उनको जाके कहा कि आप ये आप लोग ऐसे कर रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो ये हमें हमारी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत हेल्पफुल है। अगर हम सब अपने अपने काम से काम रखें और लोगों की जिंदगी में ना इंटरफेयर करें, ना ही किसी को जाके शिकायतें लगाएं कि कोई आके हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करे, या कोई देख ले तो अब इंटरफेयर कर रहा है, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरी साइड ले रहा है, तो ये चीज ना करें। ये इस चीज को, ये एक इंस्टीट्यूट है मियाँ बीवी का, इसको अगर आप चाहते हैं कि सिक्योर रहे, तो इन चीजों से इसको बचा करके। ये इतनी इतनी अच्छी बातें हमें इन अहादीस से पता चल रही हैं जी। इसलिए कि हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ख्याल करते थे कि हजरत उम्मे सलमा के पास भी चल पड़े उनको कहने के लिए। तो लेकिन चाहे वो रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी हजरत उम्मे सलमा ने नहीं ये गवारा किया कि मियाँ बीवी के मामला में कोई तीसरा बंदा पड़े। तो हम ये जो हैप्पी मैरिजेस के लिए हम कई काउंसलिंग और ये और वो इधर उधर देखते हैं, उससे बेहतर आप अहादीस पढ़ लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी काउंसलिंग मिल जाएगी, बहुत सारे सबक हैं इनके अंदर, क्योंकि कैसे एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारी जाए। बट व्हेन देयर ब्रदर टॉक्स बैड विद भाभी भी से भाभी भी तो बोलती हैं। बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी आपने कही कि बिल्कुल कि हम अपने लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स चाहते हैं और हम दूसरों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स रखते हैं, और भाभी हो या बहू हो या बेटा चीख रहा है बहू के ऊपर, तो इसके ऊपर तो खुश होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छे ही रहे तो ये सही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब ये सबसे पहले अपने आप से ये करें कि हमने दखल अंदाजियां बंद कर देनी, चाहे हम सास हैं चाहे हम नंद हैं, ना किसी की जिंदगी में, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं में दखल अंदाजी करते हैं, या हम चाहे बहन है या हम कोई भी है, देवरानी जेठानी है कोई वो भी है हम, तो अपनी बहन की जिंदगी में, भाई की जिंदगी में या अपने और रिश्तों की जिंदगी में हम इंटरफेयर ना करें। टीच हर मैनर्स देन, नहीं दूसरे को इंटरफेयर इस तरह से नहीं करने की जरूरत होती, उनको आपस के अंदर डील करने दें। ठीक है, उनको आपस में डील करने दें कि वो एडल्ट्स हैं और एक दूसरे के साथ रहना कैसे है, वो एक दूसरे के क्या लिमिट्स हैं, उनको आपस में तय करने दें। मैं नहीं समझी कि टीचर मैनर्स देन और दैट्स अ काइंड ऑफ सिन इफ समवन इंटरफेसिंग दैट आई विल टीच हर मैन। नहीं नहीं देखिए हजरत उमर यही काम करने तो गए थे कि मैं जाके समझाता हूँ उनको, तो उन्होंने कहा आपको जरूरत नहीं समझाने की, हमारा वो उनके साथ ताल्लुक है, जो उनके साथ रिश्ता है, आप अपने काम से काम रखें। यानी ये बेसिकली इसका पूरे बात का ये है। उन्होंने कहा इब्ने खत्ताब हैरत है तुझे कि आप इस मामले में भी आप दखल अंदाजी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी अजवाज के मामले में भी दखल दें। दखल का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस अलाउड। ओके, वो किसी बुरी इंटेंशन से तो नहीं गए थे, वो तो अच्छी इंटेंशन से गए थे कि आप लोग इस तरह से ना किया करें। ठीक है, अच्छा आगे हमें ये भी पता चलता है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लग्जूरियस लाइफ को पसंद करने की बजाय इस चीज को पसंद किया कि सादा जिंदगी गुजारें। और इसमें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके हिस्से में दुनिया और हमारे हिस्से में आखरत है, मुशरिकीन के। अच्छा बस इतना हम कर लेते हैं कि सारी इन अहादीस का यानी एक ही वो सबक है, एक ही हदीस है, डिफरेंट रावियों से आई है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि तलाक याफ्ता जो है उसका नान नफका, रजई तलाक में क्या होगा और अगर तलाक बाइना होगी। आप लोग पहले बताएं रजई तलाक में किसके जिम्मे है, ये मैं पहले वैसे बता चुकी हूँ आपको। रजई तलाक में नान नफका औरत का किसके से, हस्बैंड के, और तलाक बाइना में नहीं है। और अगर औरत प्रेग्नेंट है तो फिर उसका नान नफका किसके जिम्मे है और कब तक है, हस्बैंड के जिम्मे शाबाश कब तक है। कब तक? अंटिल रदाद, डिलीवरी तक। रदाद जरूरी नहीं इसलिए क्योंकि डिलीवरी तक है, इसलिए कि हो सकता है उसके बाद वो रजाद के लिए किसी और को दे दे बच्चा। ठीक है, हाँ अगर रजाद यही औरत करती है तो फिर ये आदमी उसका खर्चा उठाएगा, और अगर कोई और औरत करती है तो जाहिर है उसको पे करेगा, तो वो तो किसी को भी जो भी रजाद कर रही होगी उसको। ठीक है, और हमें ये पता चलता है कि इद्दत जो है, इद्दत चाहे किसी का खामिन फौत हो गया या किसी को तलाक हो गई हो, लेकिन प्रेग्नेंट की इद्दत कितनी है? या खुला वाली है जी, प्रेगनेंसी में भी तलाक हो जाती, डिलीवरी तक, डिलीवरी तक उसकी इद्दत है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सारी इद्दत लिख लें हर एक की, के खुला वाली की इद्दत कितनी है, तलाक वाली की, खावन फौत हो जाए तो तब कितनी इद्दत है, और कब तक रजई तलाक और बाइना और सब नान नफका किसके जिम्मे, ये सारा एक चार्ट बना लें। और फिर हमें सोग का भी पता चलता है कि सोग मनाना किसी के ऊपर जायज नहीं है कि तीन दिन से ज्यादा मनाया जाए, लेकिन औरत अपने शोहर के लिए कितने दिन का सोग मनाएगी अगर किसी का शोहर फौत हो जाता है। जी बताएंगे, किसी का शोहर फौत हो जाता है तो कितने दिन, 4 माह 10 दिन। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ तक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किताब तलाक का। हाँ सोग का और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 4 माह 10 दिन है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं कर सकती औरत, क्या क्या चीजें नहीं कर सकती। कैन गेट रेडी टू मच मेकअप, चाहे टू मच मेकअप हो लेकिन ज्वेलरी भी नहीं, घर से निकलना नहीं है, कोई भी किसी किस्म का बनाओ सिंगार नहीं। इसीलिए आपने देखा वो जल्दी जल्दी चूड़ियां उतारने शुरू हो जाती हैं। खैर औरत को खुद ही पता होना चाहिए कि क्या है इसकी अहकामात। फिर वो कहती हैं कि वो इतनी दुखी हुई क्योंकि एक तो खावन फौत हो गया, फिर लोगों ने जल्दी जल्दी चूड़ियां उतारने शुरू कर दी, तो किसी तरह का भी सिंगार नहीं, चाहे वो चूड़ियां हैं चाहे वो इयररिंग्स हैं, कुछ भी सिंगार नहीं होना चाहिए। सुरमा तक लगाने की जब इजाजत नहीं है तो फिर इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है, ठीक है। कोई खुशबू नहीं लगा सकते सिवाय किस वक्त की खुशबू, एक एक्सेप्शन इसमें, पर्दा तो वैसे ही करना है। अच्छा ये भी एक बात और समझ ले, पर्दा ये नहीं कि कोई स्पेशल पर्दा उस वक्त का है, इद्दत के टाइम का पर्दा जो है वो ही है हमेशा, ठीक है। हैज के वक्त जब हैज से पाक हो जाए तो उस वक्त जो खुशबू लगानी है वो अपने ऊपर नहीं लगानी, वो कहाँ लगानी है, इंसान अपने प्राइवेट पार्ट्स पे जो खुशबू लगाए ये है बस, दैट्स इट। वैसे नहीं कि परफ्यूम लगा के घूमना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा तो यहां तक हमारा ये किताबो तलाक का हो गया, हमने मुख्तसरन इसको देख लिया, ताकि हम अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किताबो लयान का हम रिव्यू कर लेंगे। ओनली इन इफ द स्ट्रिक्ट वाला नहीं, पर्दे के तो एक ही अहकाम है। बाज लोग पूछते हैं अच्छा वो इद्दत के दौरान फलां के सामने आ सकती है, भाई फलां के सामने अगर पहले आ सकती तो बाद में भी आ सकती, अगर नहीं आ सकती तो पहले भी नहीं आ सकती बाद में भी नहीं आ सकती, तो इद्दत के लिए कोई अलग अलग अहकाम थोड़ी है पर्दे के। अच्छा जी अब टेस्ट के बारे में, आपका सीरा का टेस्ट आ रहा है और उसके बाद जो है वो तो रमजान शुरू हो चुका होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसा ही है। आपका सीरा का टेस्ट है इंशाल्लाह 31 को, और उसके बाद तो रमजान शुरू हो चुका होगा और हमारा दौरा कुरान शुरू हो चुका होगा जी। आफ्टर रमजान इंशाल्लाह ताला हम फिर इन 3 चैप्टर्स का फिर इंशाल्लाह ताला टेस्ट कर लेंगे। आपको मैं अभी बता देती हूँ ताकि आपको नहीं मुश्किल हो, हम इंशाल्लाह फिर जुलाई में रख लेते हैं, 25 जुलाई, ठीक है आप लोगों के लिए। 25 जुलाई को ईद से भी आप फारिग हो चुके होंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आप इसको रिव्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम 25 जुलाई को इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट इन 3 चैप्टर्स का, या मैं सोच रही थी कि आप लोगों को पहले किताबों ने का और किताबों रदा का दे दिया जाए, फिर उसके बाद किताबों तलाक का और आगे किताबों लियान का दे दिया जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इनके अंदर चीजें हैं है ना, तो फिर क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर ये किताबों निकाह और किताबो रदा का हम इंशाल्लाह 25 को करेंगे, और उसके बाद फिर हम चूंकि वो एक जैसे ही हैं तो किताबो तलाक का और फिर किताबो लान का हम इस वक्त कर देंगे बाद में, और किताबो ये तकली साथ ही हो जाएगा, ठीक है ना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, इंशाल्लाह आज तो क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम हमारी लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद चूंकि लॉन्ग वीकेंड है तो फिर हमारी क्लास नहीं होगी, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा जो हमारा चैप्टर चल रहा है, और उसके बाद फिर हम रमज़ान के बाद अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, मगर टेस्ट आपका 25 जुलाई को होगा जी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास है, उसमें आप सब लोग आए, कुछ लोग कभी भी रिव्यू सेशन में नहीं आते, क्या उनको कभी भी नहीं फुर्सत मिलती आने की, कभी भी नहीं फुर्सत मिलती, यहाँ इसको इतना हम समझते ही नहीं है, हल में वो सिर्फ टेस्ट के टाइम पे वो सुन लेते हैं एक दफा रिव्यू, चलें कभी कभी तो इंसान इधर उधर हो जाता है लेकिन हमेशा ही ना आना वो सही नहीं है। तो कोशिश करा करें कि आप इसको जरा सीरियसली लें, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।